रेडियो मानव रचना 7.8 एफएम पे आप अपने दोस्त सुहान के साथ और प्रोग्राम है आपका अपना आत्मबोध, जहां पे हमारे साथ होती हैं ब्रह्म कुमारीज और उनसे हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है और हम उस पे सॉल्यूशंस और सजेशंस आपको देते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो उससे कैसे बाहर आया जाए। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है मेडिटेशन। जी हाँ, सभी के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दिन में थोड़ी देर मेडिटेशन कर लिया जाए तो दिमाग जो है बहुत अच्छा एक्टिव हो जाता है और पूरे दिन अच्छे से काम करता है। तो आज हमारे स्टूडियो में है ब्रह्म कुमारी प्रिया जी और पूनम जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति
जी। तो मैम, मेडिटेशन कहा जाता है कि इंसान अगर दिन में कभी भी 5 या 10 मिनट के लिए अगर मेडिटेशन कर ले तो उसका दिमाग जो है बहुत एक्टिव हो जाता है, शांत हो जाता है और बहुत अच्छे से काम करने लगता है। अगर उसे गुस्सा आ रहा है या थकान महसूस हो रही है तो वो सब कुछ दूर हो जाता है और उसके काम में मन लगने लगता है और काम में कभी कोई गलती नहीं होती। तो क्या मतलब एक्चुअल मीनिंग यानी यथार्थ अर्थ जिसे कहा जाता है मेडिटेशन का, वो क्या है?
सबसे पहले तो अगर योग शब्द देखते हैं तो प्राचीन काल में पहले टाइम पे देखा जाता था कि जो भी चीज़ जोड़ते थे उसको योग कहा जाता था।
ओके।
अर्थात एडिशन, जो आज की डेट में हम लोग बोलते हैं प्लस या एडिशन, तो उसको जोड़ कहा जाता था या योग कहा जाता था।
ओके।
तो सरल सा अगर हम मीनिंग देखें कि योग माना जहाँ पर हमारा मिलन हो रहा है या जोड़ हो रहा है उस परम शक्ति के साथ, जिससे कि हमें अनकंडीशनल और अन जो कहें कि अनलिमिटेड जो पावर है वो सप्लाई होता है और सदा ही होता है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, सदा होता है। और इसको अगर हम और ब्रॉड करके देखें कि एडिशन जो वर्ड है और मेडिटेशन जो वर्ड है, कि जहाँ हमारा मेंटल एडिशन अर्थात विचारों का एडिशन परमात्मा से हो रहा है, दैट कैन बी नोन एज मेडिटेशन।
ओके। तो मैं पूनम जी से जानना चाहूँगा कि वो हमें मेडिटेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगी।
देखिए, जो मेडिटेशन शब्द है ये एक लैटिन शब्द से आया है, मिडर।
ओके।
एंड मिडर का मतलब होता है हीलिंग।
ओके।
लेकिन किसकी हीलिंग? सोल की हीलिंग, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये तो फिजिकल है और इसको चलाने वाली जो बैटरी है, जो एनर्जी है, वो सोल है।
जी।
मार्केट में फिजिकल हीलिंग के लिए बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है।
जी बिल्कुल।
लेकिन सोल की हीलिंग के लिए ऐसी क्या चीज़ है?
जी,
दैट इज मेडिटेशन।
ओके।
तो मेडिटेशन मतलब सोल की प्यूरिफिकेशन के लिए जो हीलिंग होती है वो प्रोसेस है। अभी लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि सोल हमारी बहुत सारी बीमारियों में जकड़ी हुई है, उसको बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं।
ओके।
वो बीमारियों के नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
ओके।
लस्ट, ग्रीड, ईगो। तो ये सारी बीमारियां उसे लगी हुई हैं और ये वो फिजिकली तो ठीक होता है, फिजिकली फिट होने के लिए जिम जाएगा, एक्सरसाइजेस करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन सोल को ठीक करने के लिए वो कुछ नहीं करता।
जी जी।
वो ठीक नहीं कर पा रहा, इसलिए हम देख रहे हैं सोसाइटी में किस तरह की बातें घटित हो रही हैं। भ्रष्टाचार है, टेररिज्म है, हिंसा है, वायलेंस है। आज लेडीज़ के प्रति हम देखते हैं क्या दृष्टिकोण है, अत्याचार हो रहे हैं। तो ये किसका नतीजा है? बिकॉज सोल जो है इन बीमारियों से बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रही है।
जी बिल्कुल।
इसलिए इस सोल को ठीक करने के लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है।
बिल्कुल।
एक यही तरीका है जिससे ये बीमारी ठीक हो सकती है।
जी, यानी अगर देखा जाए कि हमारी जो बॉडी है उसकी जो बैटरी है वो सोल, और बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसे अच्छा रखने के लिए, लाइफ लॉन्ग बनाए रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेडिटेशन करते रहेंगे तो हमारी सोल ठीक रहेगी, और हमारी सोल ठीक रहेगी तो हमारा आसपास का माहौल ठीक रहेगा, हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो आज बात होने वाली है मेडिटेशन पर आपके अपने प्रोग्राम आत्मबोध में। ब्रह्म कुमारी प्रिया जी और पूनम जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी हमें अर्थ बताया मेडिटेशन का क्या होता है, मेडिटेशन हमारी सोल को चार्ज रखती है, हमारे को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, हमारे माइंड को अच्छा बनाए रखती है, इन बातों को उन्होंने अभी हमें बताया। और अब उनसे मैं जानना चाहूँगा कि मिथ ऑफ योगा क्या है, यानी योगा के जो मिथ बताए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं, पहले मैं पूनम जी से जानना चाहूँगा।
देखिए, सबसे पहले तो लोग ये डरते हैं इस बात से कि योग अगर जिसको जो सीखता है तो उसको जंगल में जाना पड़ेगा।
जी।
यहाँ दुनिया से, सोसाइटी से कटना पड़ेगा और उसे जंगल चले जाना पड़ेगा।
जी।
दूसरी बात, कि लोग ये सोचते हैं कि माथे पर टीका लगा लेना, चंदन का पेस्ट लगा लेना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये योग का हिस्सा है ऐसे सोचते हैं। कोई सोचते हैं कि गेहूं में वस्त्र डाल लेना वो जो है वो योगी व्यक्ति है, घंटों बैठे रहना
सोचा जाता है
ये ऐसे सोचते हैं कि घंटों बैठे रहो बस भगवान को ही याद करते रहो, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें सोचते हैं कि यही मेडिटेशन होता है, या फिर ये सोचते हैं कि अपने माइंड को जीरो स्तर पर ले आना, मतलब उसमें कोई संकल्प ही नहीं चले, थॉट्स ही नहीं आए, ये मेडिटेशन की हाईएस्ट स्टेज है, ऐसे सोचते हैं। कई सोचते हैं कि ये सब चीजें तो 60 साल के बाद करने की होती है, जबकि हम फर्स्ट आंसर में पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये हीलिंग है, ये बीमारी को ठीक करने का ही एक तरीका है जो मेडिटेशन है। और जबकि 60 साल के अगर आप हो गए तो 60 साल तक तो पता नहीं कितना जकड़ जाएंगे आप,
कितनी सारी बीमारी लग जाएंगी।
जी
बिल्कुल,
तो इसलिए ये बहुत सारी मिथ्स ऐसी फैली हुई हैं कि छोड़कर चले जाना है, सोसाइटी से कट जाना है, या फिर 60 साल के बाद आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा इल्यूजन है।
यानी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं समाज में कि लोग सोचते हैं कि जो लोग मेडिटेशन करेंगे या फिर योग में अपना ध्यान लगाएंगे तो उन्हें सोसाइटी से दूर होना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा, बहुत से लोग सोचते हैं पहाड़ों पर जाना पड़ेगा या फिर साधु बनना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी धारणा है।
इसको बिल्कुल डिफरेंट सोच लेते हैं कि ये डिफरेंट चीज़ है, ये चीज़ सीखने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसा सोचते हैं।
तो कहते हैं कि अभी तो ज़िंदगी को जियो, फिर 60 साल के बाद ये सब कुछ करना, जबकि मेडिटेशन करने में ना तो इतना वक्त लगता है और ना ही ये सब काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात। तो मैं प्रिया जी से जानना चाहूँगा कि शारीरिक क्रिया जो होती है इंसान काफ़ी हद तक उसी को योग मान लेता है, क्या ये बात सच है?
शारीरिक क्रियाओं को लेते हुए भी कई योग बनाए गए हैं जिनको लोग करते हैं आसन के रूप में, लेकिन अगर सत्य स्वरूप में अगर हम योग को लेते हैं तो दैट इज प्योरली एंड ट्रूली जो है वो सोल कॉन्शियसनेस की बात कही जाती है। जबकि शारीरिक क्रिया में जो है फिजिकल के ऊपर कॉन्शियसनेस आती है, ध्यान पूरा एकाग्र किया जाता है अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर ताकि बॉडी हील हो सके, वो जागृत हो सके, एनर्जेटिक हो सके।
जी जी।
लेकिन योग को अगर प्योर फॉर्म में देखें कि उसमें बॉडी को भूलना होता है और सोल कॉन्शियस होना होता है, और जब अपने आप के ऊपर हम इतना फोकस्ड हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, तो सोल के अंदर की जो अंतर जगत की पावर्स हैं, जो 7 पावर्स बोला जाता है, जिसकी वजह से आत्मा को सतोगुणी बोला गया है, तो वो सातों गुण, वो सातों शक्तियाँ इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर वो इतना ज़्यादा डेवलप होती हैं कि वो सर्वोपरि जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, इसलिए मुसलमान भाई भी हमारे कहते हैं कि जो खुद को नहीं जाना तो खुदा को कैसे जानोगे।
बिल्कुल सही बात।
तो योग में जब हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, सेल्फ अवेयर जब हम हो जाते हैं, तो परम सत्ता के प्रति भी हमारा ध्यान एकाग्र होने लग जाता है।
जी।
तो ये सत्य रूप में योग कहलाता है कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी से अलग एंड बॉडीली वर्ल्ड से अलग, मटेरियलिज्म से अलग, अपने को प्योर फॉर्म में शुद्ध आत्मा समझते हैं।
जी, यानी बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे हम खुद से खुद को पहचाने, खुद को जाने और खुद को ऊपर वाले से कनेक्ट करें, वहाँ पे योग होता है। यानी देखो, क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन सारी क्रियाएं को योग कहना सही नहीं होगा।
जी,
अब हम जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन को राजयोग क्यों कहा जाता है, इसका जो अर्थ है वो राजयोग क्यों है और उसके रहस्य क्या हैं?
जी, जो सबसे सर्वो श्रेष्ठ जो बोला गया, सुप्रीम जो बोला गया योगों में, वो राजयोग बोला गया है।
ओके।
जिसका वर्णन गीता में भी दिया गया है और इसे सबसे मींस अच्छा क्यों बोला जाता कि राजयोग में सबसे पहले हम उन रहस्यों को जान लेते हैं, जो रहस्य जानना एक साधारण मानव के लिए, मनुष्य के लिए इजी नहीं है।
जी।
क्योंकि वो अपने आप को मटेरियलिज्म से इतना अटैच्ड रखता है कि वो इस योग को नहीं समझ पाता, नहीं कर पाता।
ओके।
तो सबसे पहला रहस्य खुद के बारे में जानना है।
जी।
कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल।
Okay.
And that to a blessed soul, a powerful soul, a peaceful soul.
जी,
बहुत सारी qualities को लेकर के मैं आत्मा इस सृष्टि पर उतरी हूँ, और दूसरा उस परमात्मा से मेरा बहुत एक जबरदस्त कनेक्शन है, एक बहुत बड़ा रिलेशन है, तो उस रिलेशन के राज को जब मैं जान लेती हूँ तो उस रिलेशन से जो मैं अपने अंदर शक्तियों को धारण करती हूँ, तो इन बातों को जब मैं जान करके उससे कनेक्ट होती हूँ तो बहुत पावर्स, इमेंस पावर्स जो हैं वो आत्मा में डेवलप होते हैं।
जी।
और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहस्य कहें या राज कहें कि जो चक्र चल रहा है, चाहे वो समय का चक्र है, चाहे वो इस शरीर का चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, रात दिन का चक्र है, तो जब इस चक्र के बारे में संपूर्ण मुझे जो बातें पता चल जाती हैं, जो ज्ञान मुझे मिल जाता है, तो मेरी सोच बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है
जी।
और बहुत ज़्यादा मैं सशक्त हो सकती हूँ अगर इन साइकिल्स के बारे में मुझे एग्जैक्ट डेटा मिल जाए
जी।
तो इन राजों को जब मैं जान जाती हूँ तो मैं राजयोग कर पाती हूँ। तो इसको हम राजयोग वर्ड कहते हैं कि राज समझना, और विशेष वो राज जो बॉडी से अलग हैं और बॉडी की इस दुनिया से अलग हैं, जिसको अंतर जगत कहा जाता है। तो इस जगत का जब संपूर्ण ज्ञान मुझे प्राप्त होता है तो मैं राजयोग कर पाती हूँ।
यानी बहुत सारे राज हैं इसके अंदर, और जब हम बहुत सारे राज को जान जाते हैं तब जाकर हम राजयोग कर पाते हैं जी। बहुत सही बताया प्रिया जी आपने। अब मैं पूनम जी से जानना चाहूँगा, वो हमें इस बारे में क्या बताना चाहेंगे।
देखिए जो शब्द है राजयोग
जी,
तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है राज
जी,
जैसे कि उन्होंने बताया कि राज मतलब रहस्य
जी,
ठीक है। और जो रहस्य को जान लेता है वो क्या कहलाया, राजा कहलाया
जी।
तो ये वो योग है जिसे हम क्या बन सकते हैं, स्वयं का राजा बन सकते हैं।
ओके।
और ना केवल स्वयं का राजा बल्कि राजाओं का राजा।
ओके।
क्योंकि जब तक हम अपने अपनी कर्मेंद्रियों पर ही रूल नहीं करेंगे तब तक हम एक गद्दी पर कैसे बैठेंगे।
बिल्कुल सही बात है।
देखिए जैसे कि एक कोई भी नेशन होता है उसमें एक किसी अच्छे प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की जब चर्चा होती है तब हम ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है, ये बहुत अच्छे जजमेंट्स देता है, या इस तरीके की जो वैल्यूज़ हैं हम वो देखते हैं, तभी उन वैल्यूज़ के आधार पर हम उसको एक अच्छा मिनिस्टर या मंत्री कहते हैं। इसी तरीके से ये जो योग है ये हमें वैल्यूज़ लेकर आता है, हमें ऐसी पावर्स अंदर लेकर आता है जिससे हम क्या बन जाते हैं, टोटली शक्तिशाली बन जाते हैं
जी।
और इसलिए भविष्य में भी जा करके हम क्या बनते हैं, इसमें राजाओं का राजा जाकर बनते हैं। क्योंकि जैसे कि सृष्टि चक्र की भी बात हुई है
कि
कलयुग का समय है और आने वाला जो टाइम है वो सतयुग की ओर जा रहा है।
बिल्कुल।
तो हमने गीता में भी पढ़ा है, गीता में ये बात कही गई है कि भगवान ने राजयुग सिखाया, लेकिन कब सिखाया, जब महाभारत काल था
जी।
तो ये प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ये काल अभी चल रहा है और इसी समय ही भगवान आकर के हमें सतयुग के लिए राजाओं का राजा बना रहा है
जी।
और वो बनाएगा कैसे, जब तक हम अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं
जी,
आँख कान नाक मुख और हाथ, ये तो वो फिजिकल कर्मेंद्रियां हैं जो दिखाई देती हैं
जी।
उसके अलावा जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है हमारी जो आत्मा की है, मन बुद्धि संस्कार
जी,
तो ये जब आठों कर्मेंद्रियां हम इनके भी मालिक बन जाते हैं और ये हमारे ये ऐसे काम करती हैं जो हम काम इनसे करवाना चाहते हैं
जी,
वैसे ही ये काम जब करने लगती हैं टोटली ये वॉइसलेस बन जाती हैं
जी,
तब हम कह सकते हैं कि हम उस पोजीशन पे आ गए
जी,
राजाओं का राजा हम बने।
बिल्कुल सही बात। यानी अगर हम अपनी कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल पा सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं, तो हम राजाओं के राजा बन सकते हैं, राजयोग को समझ सकते हैं और कर सकते हैं जी। बहुत सही बात बताई आपने। तो इसे कहते हैं राजयोग, यानी जब आप बहुत सारे रहस्यों को समझ जाते हैं तो आप राजयोग को समझ जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा पूनम जी से कि राजयोग यानी इस योग को हर योग में टॉप मोस्ट योग कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसी क्या खास बात है।
देखिए जो राजयोग है और योग भी इसमें सम्मिलित है।
ओके।
तो इसलिए इसको टॉप मोस्ट योग कहा गया है दुनिया का। और क्योंकि मैंने बताया कि ये राजाओं का राजा बनने का योग है
जी,
क्योंकि ये एक तरह से पढ़ाई है, कोई भी डिग्री को प्राप्त करने के लिए उसका क्या करना पड़ता है, उसको डेप्थ में स्टडी करना पड़ता है
जी जी।
तो राजा कोई ऐसे ही नहीं बन जाएंगे आप, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई भी आपको प्रैक्टिकल में लानी पड़ेगी
जी।
तो जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको जब तक आप एक्शंस में नहीं लेके आएंगे तब तक आप राजा भी कैसे कहलाएंगे
जी।
और जब हम राजयोग की जो पढ़ाई है स्टडी है उसको जब हम प्रैक्टिकल में उतारते हैं तो उसको कर्म योग कहा जाता है
जी,
जिसकी बात गीता में भी कही गई है।
ओके।
कर्म योगी बनना, क्योंकि क्योंकि ये जो योग है इसमें परमात्मा से हमें सारी स्किल्स सारी पावर्स और गुण प्राप्त होते हैं
जी,
और उन्हीं स्किल्स को उन्हीं पोटेंशियल्स को जब हम कर्म क्षेत्र में उतारते हैं वैसे ही कर्म करते हैं जैसे वो डायरेक्शन हमको देता है
जी,
तो हम कर्म योगी कहलाते हैं
जी।
और जब हम ये चीज कर्म क्षेत्र में ले आते हैं तो हम प्रैक्टिकल में राजयोगी फिर कहलाते हैं
जी जी जी।
थ्योरी से स्टार्ट हुआ और फिर इसकी एंडिंग जो है हमारी प्रैक्टिकल राजयोग 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 पे खत्म होती है
जी।
तभी हम ये, क्योंकि ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, तभी हम राजाओं का राजा इसमें बन पाते हैं
जी।
और दुनिया के अंदर भी देखा जाए तो टॉप मोस्ट कौन होता है, पोजीशन टॉप मोस्ट किसकी होती है, जो भी किसी नेशन का मालिक है, प्रेसिडेंट
होता
है,
जो सबसे ऊंची पोस्ट पे होता है।
हाँ, तो इसलिए इस टॉप मोस्ट पोजीशन को एक्वायर करने के लिए हमें ये स्टडी करनी पड़ती, इसलिए इसको टॉप मोस्ट योग बोला गया है
जी।
इसलिए इसमें कटना नहीं है। सन्यासी तो ये सोचते हैं कि मतलब सन्यास लेना यानी कि
दुनिया से ही अलग हो जाना,
दुनिया से अलग हो जाना, कोई एक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें तो एक्शंस को दिखाना पड़ेगा आपको दुनिया के सामने।
बिल्कुल सही बात है। यानी अगर आप बेहतर लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, एक तनाव मुक्त यानी स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी खुश रखना चाहते हैं, तो आपको इस योग क्रिया को करना पड़ेगा, दुनिया से थोड़ा अलग बनना पड़ेगा। और जब तक आप खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं समझ सकते, तो आप दूसरों को भी नहीं समझा सकते। अब मैं प्रिया जी से जानना चाहूँगा कि वो हमें इस बारे में क्या बताना चाहेंगी।
इसे टॉप मोस्ट इसलिए भी कहा गया है क्योंकि हम बचपन से ही, जब से जन्म लेते हैं, हम कोई ना कोई योग ज़रूर कर रहे होते हैं, जबकि हमें किसी ने सिखाया नहीं है। लेकिन ये हमारी नेचर है कि जब हम किसी के शरीर को याद करते हैं तो उसे शारीरिक योग या मनुष्य योग कहा जाता है
जी, जी, जी,
और वो हम ऑलवेज करते हैं, चाहे अपने हम माँ को याद करें, पिता को याद करें, बंधुओं को याद करें, पर हम याद करते हैं
जी।
तो सीधे शब्दों में या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि किसी की भी याद एक योग है।
ओके।
लेकिन जो राजयोग है वो इन सभी योगों में न्यारा इसीलिए है कि हम इसमें किसी के भी शरीर को याद नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी मटेरियलिज्म को याद नहीं कर रहे हैं, हम किसी नेचर को याद नहीं कर रहे हैं, हम इन सबसे जो ऊपर की सत्ता बोली जाती है, जिस नूरे इलाही को दुनिया में बोला जाता है, जिस गॉड सुप्रीम माना जाता है जिसे, और जो भगवान शब्द बोला जाता है, उनका इसमें आह्वान किया जाता है
जी।
और अपने को उससे ही अटैच करने की इसमें कोशिश की जाती है, और उससे अटैच होने के बाद उनसे पावर्स लेकर के स्प्रेड करने के एक ये क्रिया है जिसको राजयोग कहा जाता है। ये योग इसीलिए ही टॉप मोस्ट है क्योंकि ये जो परमात्मा से मिलन है वो हम दूसरे जो आसन कर रहे हैं या जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ नहीं होती है
जी।
और राजयोग में इन सबसे अटैच होकर के भी, डिटैच होकर, अटैच होते हुए भी डिटैच होकर के हम उससे अटैच रहते हैं, यानी कर्म करते हुए भी हम उसकी याद में कर्म योग कर रहे होते हैं
जी। यानी हम और बाकी काम भी कर रहे होते हैं और ऊपर वाले के साथ भी जुड़े रहते हैं अगर हम इन योग को करते हैं।
बिल्कुल
सही बात। तो अपने आप को दुनिया से अलग भी नहीं करना, दुनिया के साथ भी रखना है और ऊपर वाले से भी अपने आप को जोड़ के रखना है अगर हम इस योग को करते हैं, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और इनसे मैं अब जानना चाहूँगा कि प्रेयर और मेडिटेशन बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, कहने को कहा जाता है कि हम प्रेयर जो करते हैं या स्कूल कॉलेजेस में कराई जाती है मॉर्निंग में, या मेडिटेशन कराना, दोनों सेम होता है या दोनों अलग चीज़ें होती हैं?
देखिए, दोनों शब्द अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है मीनिंग भी इनके अलग अलग होंगे।
जी जी जी।
क्योंकि प्रेयर जो है इसमें जब हम भगवान को क्या करते हैं, भगवान से मांग रहे होते हैं
जी,
भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे, तो एक जो रिलेशन है वो किस तरीके का होता है कि भगवान को तो हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे बिठा देते हैं और अपने आप को बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे ले आते हैं कि मैं तो ये हूँ, मेरे में कोई पावर नहीं है, मेरे में कोई गुण नहीं है, तुम ही देने वाले हो। तो इस तरीके से हम जो अपना सेल्फ एस्टीम है, जो अपना मोरल है, उसको बिल्कुल डाउन लेवल पे ले आते हैं
जी।
तो लेकिन मेडिटेशन जस्ट इसके विपरीत होता है। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अपने आप को कोई दास या फिर गुलाम नहीं कहते भगवान का, हम कहते कि मैं तेरा बच्चा हूँ और तुम मेरे पिता हो। एक रिलेशनशिप, एक हक का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, और जहाँ एक हक हो जाता है वहाँ मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसलिए एक ये चीज़ डिफरेंस है बहुत बड़ा प्रेयर और मेडिटेशन के अंदर।
बिल्कुल सही बात है कि एक फ़र्क होता है प्रेयर और मेडिटेशन में। अगर दोनों शब्द अलग हैं तो दोनों के मीनिंग भी अलग होंगे। प्रिया जी, आप क्या बताएंगे?
सबसे पहले कि प्रेयर जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है विद गॉड
जी,
कि हम उस दौरान, कई लोग तो हमने देखा है कि प्रेयर में सिर्फ एक रटा रटाया मंत्र जो है, जो उनकी होली बुक्स में है या जो वर्ड्स हैं, वो उसका उच्चारण करते हैं चाहे मन से चाहे बोल करके, और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना पूरी हुई
जी।
जबकि मेडिटेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है
जी,
कि जहाँ हम अपने दिल की बात को परमात्मा के आगे रख रहे हैं और उनसे रिप्लाई लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए
जी,
माना कि हम उनसे बात कर रहे हैं। मेडिटेशन इज एग्जैक्टली अ कम्युनिकेशन, यानी एक बात एक वार्तालाप, और प्रेयर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमने अपनी एक रिक्वेस्ट, एक अर्जी डाल दी है, बाकी मर्जी आपकी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर परमात्मा से बात करनी है तो मेडिटेशन एक बहुत सहज रास्ता है। दूसरा, अगर देखें कि प्रेयर में हम फुली बॉडी कॉन्शियस हैं, हमें अपने और इस दुनिया का अनुभव या फिर कहें एक जागृति रहती है, जबकि मेडिटेशन में हम सोल कॉन्शियस रहते हैं और सुप्रीम सोल कॉन्शियस रहते हैं, और इन दोनों के बीच का ही लिंक हमें याद रहता है और उसी से हम प्राप्तियां कर पाते हैं। और फिर देखें कि जो प्रेयर करने वाले हैं वो बॉडी को हील कर रहे होते हैं, और जबकि मेडिटेशन करने वाले बॉडी एंड सोल प्लस नेचर, आसपास के वातावरण को भी वो हील कर रहे होते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्रेयर में सिर्फ हम एक लेवल पे बंधे हुए हैं एंड दैट टू फिजिकल लेवल, जबकि मेडिटेशन में हम उस लेवल को क्योर करते हुए उसको तोड़कर बाहर आ रहे हैं और सुप्रीम लेवल को टच करते हुए फिर फिजिकल लेवल को क्योर कर रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। यानी प्रेयर कहीं ना कहीं प्रार्थना करना, ऊपर वाले के आगे झुकना, उससे कुछ मांगना, और सिर्फ मांगना है, चाहे अपने लिए या अपनों के लिए। लेकिन बात अगर मेडिटेशन की जाए तो उसमें हम अपने आप को समर्थ बना रहे हैं, लायक बना रहे हैं, और ऊपर वाले से बात कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को और कैसे बेहतर बनाएं, और तुम हमें हमेशा हमारे साथ रहो। जी बिल्कुल, बहुत सही बातें आपने बताई रेडियो मानव रचना 7.8 FM पे। फिलहाल तो वक्त चलने का हो चला, चलते चलते मैं फिर भी आप लोगों से एक छोटा सा मैसेज, इतनी अच्छी बातें आपने बताई हैं, लेकिन एक छोटा सा मैसेज लेना चाहूँगा कि लोग मेडिटेशन करें जब भी उन्हें टाइम मिले और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं।
जी, सबसे पहले लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ अगर हम राजयोग का भी अपने लाइफ में प्रैक्टिकल जो कहें कि धारणा करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर्स आती हैं।
जी,
सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी आती है।
जी,
तो इसीलिए मेरा यही गुजारिश है कि इसको पूर्ण रूप से समझ करके इसका अभ्यास करें।
जी बिल्कुल सही बात है। पूनम जी, आप क्या बताना चाहेंगी?
मैं ये बोलना चाहूँगी हमारे श्रोताओं को कि इसको डिफ़िकल्ट नहीं समझे।
जी,
कई लोग ये सोचते हैं कि इसके लिए बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत एक एक दो दो घंटा बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन ये उठते बैठते, चाहे आप कार में भी ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, सोफा पे बैठे हैं, कहीं पर भी आप इसे कर सकते हैं। बहुत इजी है ये, एंड सुबह शाम आप 15-20 मिनट भी निकालते हैं तो आप खुद अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है, चेंज ज़रूर आएगा अगर हम अपने आप को मेडिटेट करेंगे ऊपर वाले से, यानी सुप्रीम सोल के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स को दी।
ओम शांति।
ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थी ब्रह्मा कुमारी प्रिया जी और पूनम जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई राजयोग यानी मेडिटेशन के बारे में। और फिलहाल तो वक्त हो चला है और इजाज़त लूँगा मैं भी, यानी आपका दोस्त सुहान, और वादा रहा कि फिर आपसे मुलाकात होगी आत्मबोध में एक नए टॉपिक के साथ और करेंगे बहुत सारी बातें। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए रेडियो मानव रचना 7.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।